ये कोई राज की बात नहीं है कि टेक कंपनियां आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या AGI बनाने की होड़ DH में हैं, जो इंसानी दिमाग की बराबरी कर सके। पर मजे की बात ये है, हमारे दिमाग के पास पहले से ही होम फील्ड एडवांटेज है। वो उतना ही भारी काम बहुत कम रिसोर्सेज में करते हैं, चाहे वो एनर्जी हो, पानी हो, जमीन, कॉम्पोनेंट्स या पैसा हो। इंसानी दिमाग कहीं ज्यादा बेहतर और सस्ते हैं। साइंटिस्ट्स ने यह तब पता लगा लिया था जब हम ChatGPT से सैंडविच रेसिपी पर बहस भी नहीं कर रहे थे। और अब जब AI की रेस तेजी से गर्म हो रही है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स पूछ रहे हैं, दिमाग जैसा AI क्यों बनाना जब असली चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप या तो इंसानी ब्रेन सेल वाला कंप्यूटर खरीद सकते हैं या रिमोट पर टाइम रेंट कर सकते हैं। हाँ, आजकल तो ब्रेन पावर का भी सब्सक्रिप्शन है। तो ये कंप्यूटर्स असल में कर क्या सकते हैं, ये काम कैसे करते हैं, और सबसे जरूरी बात, क्या हमें थॉट ढासा घबराना चाहिए? मैं मैट फेरेल, अनडिसाइडेड में स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए लाया है ब्रिलियंट। क्या आपके पास $35,000 और एक लैब कोट फालतू पटीडा है? तो आप CL1 के मालिक बन सकते हैं, जो कॉर्टिकल लैब्स का बायो कंप्यूटर है। आपके रेगुलर कंप्यूटर के विपरीत, जो बायोस पर चलता है, CL1 चलता है बायोएस या बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम पर, क्योंकि ये दिमाग की नकल करने के बजाय सचमुच एक दिमाग इस्तेमाल करता है। इसमें जीवित इंसानी न्यूरॉन्स होते हैं, जो एक सिमुलेटेड दुनिया में रिएक्ट करते हैं, सीखते हैं और अडेप्ट करते हैं। ये असली दिमाग जैसा है, बस अस्तित्व का डर नहीं। उम्मीद तो यही। और कॉर्टिकल लैब्स अकेली नहीं जो जीवित कंप्यूटर्स बना रही। स्विट्जरलैंड में फाइनल स्पार्क भी ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स के रूप में इंसानी न्यूरॉन्स ट्रेन कर रही। ये जीवित ब्रेन सेल्स के छोटे क्लस्टर्स हैं, रिसर्च के लिए किराए पर ले सकते हैं। मैंने कुछ रिसर्चर्स से बात की जो ये सिस्टम इस्तेमाल कर रहे, और यकीन मानिए, ये सुनने में जितना अजीब दिलचस्प लगता। इससे पहले कैसे जाने, सीधी बात पूछते हैं, क्यों? जब इतने बढ़िया सिलिकॉन कंप्यूटर्स हैं, ब्रेन सेल्स उगाने की मशक्कत क्यों? कॉर्टिकल लैब्स के CEO हॉन वेंग चोंग के अनुसार ये सिंपल है। हर कोई AGI बनाने की होड़ DH में है, पर एकमात्र असली AGI जिसे हम जानते हैं वो है बायोलॉजिकल या ह्यूमन इंटेलिजेंस। पर एक और बड्ढा, ज्यादा उलझा कारण भी है, सस्टेनेबिलिटी। जनरेटिव AI सब कुछ खा जाता है, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा पानी, ज्यादा जमीन, ज्यादा चिप्स। ये बेकाबू होकर रिसोर्सेज निकल रहा है और बदतर हो रहा है। इसके बारे में मैंने हाल ही में एक और वीडियो में बात की थी। पर टेक कंपनियां धीमी नहीं हो रही हैं, वो दायरा बढ़ा रही हैं, पर एक हद तक ही विस्तार कर सकते हैं। डेटा सेंटर्स सिर्फ बिजली नहीं खींच रहे, पानी खत्म कर रहे हैं, जमीन खा रहे हैं और स्थानीय समुदायों पर दबाव डाल रहे हैं। 2024 की शुरुआत में OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा था, हमें दुनिया में उससे कहीं ज्यादा एनर्जी चाहिए जितना हमने सोचा था, और मुझे लगता हम अभी भी इस टेक्नोलॉजी की एनर्जी जरूरतों को ठीक से समझ नहीं पा रहे। अच्छी खबर यह है कि बिना किसी बड़ी सफलता के वहां पहुंचना नामुमकिन। फाइनल स्पार्क के फ्रेड जॉर्डन को लगता उन्हें वो मिल गया, जीवित न्यूरॉन्स। अगर बायो कंप्यूटर्स को ट्रेडिशनल AI की तरह ट्रेन करें, जॉर्डन कहते AI की एनर्जी खपत हजारों गुना कम कर सकते, कार्बन फुटप्रिंट लगभग गायब हो जाएगा। और ये क्यों मायने रखता, समझने के लिए कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। मिलिए फ्रंटियर से, अमेरिका का पहला एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर। ये 1.1 एक्साफ्लॉप्स जनरेट करता है, यानी 1 क्विंटिलियन कैलकुलेशंस प्रति सेकंड, जबकि इसका वजन 266 मीट्रिक टन है। ये 74 कैबिनेट्स में फैला है और इसे बनाने में $600 मिलियन लगे। अब इसकी तुलना अपने दिमाग से कीजिए, 1.3 किलोग्राम या लगभग 3 पाउंड, 20 वॉट पावर, एक एक्साफ्लॉप की रॉ परफॉर्मेंस और एक प्राइस टैग जिस पर बस लिखा है लागू नहीं। सच में डेविड बायर्न सही थे, हम फ्लिपी फ्लॉपी बना रहे। कॉर्टिकल लैब्स ये समझता। उनका मोटो है, जिस चीज की नकल में डिजिटल AI मॉडल्स बेहिसाब रिसोर्सेज खर्च करते, हम उसी से शुरुआत करते। AGI भूल जाइए, वो SBI यानी सिंथेटिक बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस के पीछे। पर वो ये कर कैसे रहे? इससे पहले देखें ये ब्रेन कंप्यूटर्स काम कैसे करते, ये जानना अच्छा रहेगा इन्हें प्रोग्राम कैसे करते। और हमारे आज के स्पॉन्सर ब्रिलियंट आपकी मदद कर सकती है। ब्रिलियंट आपको हर रोज मैथ्स, साइंस, प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस, AI में हजारों इंटरेक्टिव लेसन से ज्यादा स्मार्ट बनने में मदद करता। सबसे अच्छी बात, ये ब्रिलियंट हैंड्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग से सिखाता, जिससे आप कॉन्सेप्ट्स के साथ खेल सकते। करके सीखना लेक्चर देखने से 6 गुना ज्यादा असरदार है। आप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करते हैं, जो आपको बेहतर विचारक बनाती है। इसे स्टैनफोर्ड, MIT, कैलटेक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और कई जगहों के अवार्ड विनिंग टीचर्स, रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स की टीम ने तैयार किया है। प्रोग्रामिंग जैसे टॉपिक्स पर कोर्सेज से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर बनाएं, जो लगातार विकसित हो रही, जैसे हम आज बात कर रहे। जटिल समस्याओं को कोड के हिस्सों में थोड़ी एज कर प्रोग्रामर की तरह सोचना सीखें। कंप्यूटर लॉजिक के लिए इंट्यूशन डेवलप करें ताकि आप असली प्रोग्राम्स डिजाइन डीबग कर सकें और पहले दिन से प्रोग्राम्स बनाना शुरू करने के लिए पाइथन से परिचित हों। ब्रिलियंट जो ऑफर करता उसे 30 दिनों के लिए मुफ्त आजमाने। brilliant.org/undecided पर जाएं या QR कोड स्कैन करें या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। आपको एनुअल प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 20% छूट भी मिलेगी। मुझे ब्रिलियंट बहुत पसंद और लगता आपको भी पसंद आएगा। ब्रिलियंट का और चैनल सपोर्ट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर स्किन सेल्स को न्यूरॉन्स में कैसे बदलते? बायोकंप्यूटिंग एफिशिएंसी के लिए उम्मीद जगाता बायोकंप्यूटर है क्या? 2024 में हॉनवेंग चोंग ने CL1 को अ बॉडी इन अ बॉक्स कहा। और नहीं, ये कोई हॉरर मूवी प्रॉप नहीं जो जार में तैर रहा। अंदर के न्यूरॉन्स स्टेम सेल्स हैं, या यूं कहें साइंटिस्ट्स द्वारा रीप्रोग्राम से पहले वे स्टेम सेल्स थे। इसकी बेसिक जानकारी ये, इंसानी शरीर में कुछ तरह के स्टेम सेल्स होते। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स शुरुआती विकास में होते, जबकि वयस्कों में स्किन बोन मैरो जैसी जगहों पर होते जो जरूरत पड़ी DHNA पर नए सेल्स बनाते। एक बार जब ये स्टेम सेल्स किसी खास भूमिका में स्पेशलाइज हो जाते, जैसे स्किन सेल्स, वे वैसे ही रहते। किसी भी चीज में स्पेशलाइज होने की क्षमता को प्लूरिपोटेंसी कहते हैं। लंबे समय तक रिसर्चर्स को लगता था मैच्योर इंसानी सेल्स मूल अवस्था में वापस नहीं आ सकते। फिर 2012 में क्योटो यूनिवर्सिटी के शिन्या यामानाका ने इसके विपरीत साबित करने नोबेल पुरस्कार जीता। जीन्स के खास सेट को बदलकर उन्होंने चूहे के स्किन सेल्स को वापस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में बदल दिया, जो फिर से कुछ भी बनने तैयार थे। एक कंप्लीट बायोलॉजिकल रीसेट। और हाँ, ये इंसानों पर भी काम करता है। कॉर्टिकल लैब्स और फाइनल स्पार्क ठीक इसी तरह अपने न्यूरॉन्स उगाते हैं। ये प्रोसेस डी डिफरेंशिएशन से शुरू होता है। रिसर्चर्स एडल्ट वॉलंटियर्स से ब्लड या स्किन सेल्स लेते हैं, उन्हें रीप्रोग्राम करके iPSCs में बदल देते हैं। फिर हफ्तों की इंक्यूबेशन और जीन फेरबदल के बाद, कोई एपिक ट्रेनिंग मोंटाज नहीं है, सेल्स धीरे धीरे बदलते हैं। आखिर में रिसर्चर्स iPSCs को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, उन्हें न्यूरल प्रोजेनिटर सेल्स, ट्रेनिंग ले रहे बेबी न्यूरॉन्स बनने की ओर ले जाते हैं, जो टेस्ट पास करने पर अगले स्टेज पर जाते हैं। कॉर्टिकल लैब्स के मुताबिक जब ये सेल्स न्यूरॉन्स बनने को तैयार होते हैं, रिसर्चर्स उन्हें MA चिप पर रखते हैं। ये सेल्स चिप से जुड़ जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजे और पाए जा सकते हैं। कुछ महीनों तक वे बढ़ते हैं और फिर इंसानी न्यूरॉन्स सिलिकॉन से मिल जाते हैं। इससे ज्यादा साईफाई और क्या हो सकता है? तो इस पूरे प्रोसेस का मकसद क्या है? ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स बनाना, असली अंगों के मॉडल पर बने छोटे 3D टिश्यू कल्चर्स। रिसर्चर्स इनका इस्तेमाल ये स्टडी करने के लिए करते हैं कि किडनी, फेफड़े, दिमाग जैसे अंग कैसे विकसित होते हैं और काम करते हैं। इन्हें बायोलॉजी क्लास के प्लास्टिक मॉडल्स जैसा समझें। बस ये वाले जीवित हैं, वे खाते, बढ़ते, वेस्ट बनाते और मर जाते। साफ कहूं तो ये पूरे इंसानी दिमाग नहीं, आसपास भी नहीं। इन्हें ऑर्गेनॉइड्स कहते, ऑर्गन्स नहीं। इसकी एक वजह है, वे अंग जैसे होते हैं, ऑर्गेनॉइड्स छोटे होते हैं, दिमाग के कुछ हिस्सों तक सीमित, करीब 5 मिलियन सेल्स के साथ, आधे सेंटीमीटर के। आपके दिमाग में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स और 85 बिलियन नॉन न्यूरोनल सेल्स होते हैं। तो हाँ, ये बहुत छोटा है। सिंथेटिक न्यूरॉन्स में इतनी बारीकियां हैं जो मैं यहां नहीं बता सकता। कॉर्टिकल लैब्स ने इसे यूट्यूब पर स्टेप बाय स्टेप समझाया है, अगर आप गहराई से जानना चाहें। शॉर्ट वर्जन, इसमें महीनों की मेहनत लगती है। फाइनल स्पार्क का टाइमलाइन एक ब्रेन ऑर्गेनॉइड बनाने में लगभग 4 महीने का है। और जैसे ही CL1 आया, MIT रिसर्चर्स ने चौंकाने वाली घोषणा की। उन्होंने स्किन सेल्स से सीधे न्यूरॉन्स बनाकर स्टेम सेल स्टेज स्किप करने का तरीका खोजा। अगर ये बड़ी पैमाने पर हुआ, ये शॉर्टकट बायो कंप्यूटिंग के लिए न्यूरॉन प्रोडक्शन तेज, सस्ता बना सकता। लक्ष्य ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स को AI के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करना है, जिसे कुछ लोग अनऑर्गेनिक इंटेलिजेंस या OI कह रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि लैब में मिनी ब्रेन्स उगाने के एथिक्स का क्या? ये एक अच्छा सवाल है, और ये कुछ ऐसा है जिसका जवाब बायोटेक, न्यूरोसाइंस और फिलॉसफी के रिसर्चर्स भी ढूंढने में जूझ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उस रैबिट होल में बहुत दूर भटक जाएं, चलिए पहले बात करते हैं कि आप इन चीजों से असल में कर क्या सकते हैं। SBI, OI, बायो कंप्यूटिंग, वेटवेयर, जो भी कहो, इसे बनाने के अलावा ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स मेडिकल रिसर्च में कमाल कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स इनका इस्तेमाल बीमारियां मॉडल करने, नई दवाएं टेस्ट करने, जीन थेरेपीज एक्सप्लोर करने, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की सीमाएं बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और किसी दिन यहां की तरक्की एनिमल टेस्टिंग की जरूरत कम करने में मदद कर सकती है। CL1 जैसे बायो कंप्यूटर्स की बात करें तो कॉर्टिकल लैब्स और फाइनल स्पार्क इन पर बड़ा दांव लगा रहे हैं, आज के रिसोर्स हंग्री AI के ग्रीनर विकल्प के तौर पर, या कम से कम वे ऐसा कहते हैं। तो असल में आप अभी एक बायो कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं? कंप्यूटिंग में माइलस्टोन्स अक्सर गेम्स के रूप में आते हैं। एलन ट्यूरिंग के इमिटेशन गेम ने ट्यूरिंग टेस्ट को प्रेरित किया। आईबीएम के डीप ब्लू ने 1997 में चेस चैंपियन गैरी कास्पारो को हराकर सुर्खियां बटोरी। फिर डीप माइंड के अल्फागो ने 2016 में गो मास्टर ली सेडोल को हराया। सो, और अब मिलिया डिशब्रेन से कॉर्टिकल लैब का छोटा सा जीता जागता प्लेयर। ये डीप ब्लू की तरह ऊंचा नहीं है, जिसे इसके क्रिएटर ने 1995 में एक ऑफिस रेफ्रिजरेटर से कंपेयर किया था। इसे अल्फागो की तरह 1202 सीपीयूज नहीं चाहिए, और ये फ्रंटियर पहले एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर की तरह 7300 स्क्वायर फीट जगह नहीं घेरता। डिशब्रेन फिट हो जाता है एक पेट्री डिश में। 2022 तक ये पोंग खेल सकता था। ये रहा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। डिशब्रेन डेवलपमेंट के दौरान कॉर्टिकल लैब्स ने MEA चिप्स पर उगाए गए इंसानी और चूहे के न्यूरॉन्स स्टडी किए। आइडिया, फ्री एनर्जी प्रिंसिपल पर आधारित इंटेलिजेंट सिस्टम्स प्रेडिक्टेबिलिटी पसंद करते हैं। उन्होंने न्यूरॉन्स को इलेक्ट्रिकल फीडबैक से पोंग खेलना सिखाया। ये सेटअप दिखाता है कि हम दुनिया को कैसे समझते हैं। हमें सेंसरी इनपुट मिलता है, दिमाग उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलता है और हम रिस्पॉन्ड करते हैं। डिशब्रेन के न्यूरॉन्स ने भी सिमुलेटेड गेम वर्ल्ड में यही किया। जब न्यूरॉन्स बॉल मिस करते थे, उन्हें रैंडम अनप्रेडिक्टेबल सिग्नल्स मिलते थे, 4 सेकंड के लिए 150 मिलीवोल्ट्स 5 हर्ट्ज पर। इमोशनल सजा नहीं, बल्कि जैसे फाउल पर सीटी की जगह स्टैटिक। जब वे बॉल रोक लेते थे, उन्हें इनाम मिलता था 100 मिलीसेकंड के लिए 100 हर्ट्ज पर एक क्लीन स्मूथ साइन वेव। और जितना ज्यादा इनपुट मिलता, उतना बेहतर परफॉर्म करते। जब फीडबैक नहीं था, परफॉर्मेंस बस फ्लैट लाइन हो गई। कॉर्टिकल लैब्स का तर्क है कि ये दिखाता है डिशब्रेन सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा था, सीख रहा था। अभी इतना अच्छा नहीं कि आपको पोंग में हरा दे, पर फिर भी ये काफी वाइल्ड है। बायो कंप्यूटिंग की तरह कॉर्टिकल लैब के काम के पीछे की थियोरेटिकल न्यूरोसाइंस एक वीडियो के लिए गहरी रैबिट होल है। पर अगर आप किसी दिन पूरा बायोटेक डीप डाइव चाहते हैं तो बताना। फिलहाल जर्नल आर्टिकल्स छोड़ डालते हैं और हैंड्स ऑन बात करते हैं। CL1 के $35,000 प्राइस टैग और इसे खरीदने के लिए लेजिट रिसर्चर होने के बावजूद बायो कंप्यूटर्स से इंटरेक्ट करना उतना मुश्किल नहीं जितना आप सोचते होंगे। शुरुआत के लिए CL1 की API डॉक्यूमेंटेशन GitHub पर पब्लिकली अवेलेबल है। फाइनल स्पार्क और कॉर्टिकल लैब्स दोनों के पब्लिक डिस्कॉर्ड सर्वर हैं, जहां सवाल पूछ सकते हैं, नोट्स स्वैप कर सकते हैं और दूसरों के साथ गीक आउट कर सकते हैं। लैब बजट नहीं है तो दोनों कंपनियां अपने लिविंग न्यूरल नेटवर्क्स का रिमोट एक्सेस रेंट पर देने के लिए सब्सक्रिप्शन दे रही है, पर कुछ शर्तें हैं। फाइनल स्पार्क का प्लेटफॉर्म लाइव है पर अप्रूवल पर निर्भर है। कॉर्टिकल लैब्स की रेंटल सर्विस अभी तैयार हो रही है। अभी फाइनल स्पार्क अपने न्यूरल प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल यूजर्स के तौर पर 10 यूनिवर्सिटीज बताता है। मुझे फाइनल स्पार्क सिस्टम यूज करने वाली 2 रिसर्च टीमों से बात करने का मौका मिला, जो उन्हें ब्रेन ऑन ऑर्गेनॉइड्स के साथ रिमोटली काम करने देता है। पहले हैं इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर के डॉ काइल वेजवुड और इंटर्न विक्टर वियाक। वेजवुड न्यूरोसाइंस में स्पेशलाइज करने वाले मैथमेटिशियन हैं और वो फाइनल स्पार्क के ऑनऑर्गेनॉइड से ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि न्यूरॉन्स असल में कैसे काम करते हैं, उनके फंडामेंटल्स।
और यहाँ ये सवाल पूछने की कोशिश है कि हम न्यूरोनल नेटवर्क्स के मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन से क्या ले सकते हैं और उनका इस्तेमाल ये समझने के लिए कि न्यूरोनल नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, सेल्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और हम अपने न्यूरल नेटवर्क पर टारगेटेड कंट्रोल या मॉड्यूलेशन कैसे कर सकते हैं।
जब मैंने पूछा न्यूरॉन्स को ट्रेन करना कैसा होता है, वेजवुड ने सीधे कॉर्टिकल लैब की पोंग स्टडी बताई।
समय के साथ इन नेटवर्क्स को स्टिमुलेट करने पर वे न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस को मजबूत कमजोर करके रिस्पॉन्ड करते हैं। इसे साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी कहते हैं, जो दिमाग के सीखने, याद रखने, स्किल्स पाने का एक तरीका है। जाहिर है न्यूरोनल नेटवर्क पोंग खेलने में बहुत अच्छा नहीं हुआ है ना, ये बस शुरुआत से बेहतर हुआ, पर इसने दिखाया कि आप इन सिस्टम्स में लर्निंग स्टडी कर सकते हैं।
फिर मैं ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी के ADAS इंस्टीट्यूट के डॉ जेर्ड ओल्डेस्केपर से मिला। कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंटिस्ट के तौर पर स्केपर देख रहे हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स जानकारी कैसे स्टोर करते हैं और क्या वे पारंपरिक कंप्यूटर्स से बेहतर हो सकते हैं।
हर सेल, इंडिविजुअल सेल, हर पल में बड़ी संख्या में कंप्यूटेशनल टास्क सॉल्व करता है। हमें बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर की काफ़ी जानकारी है जो और स्पष्ट होती जा रही है, पर वे आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, मिलकर कॉम्प्लेक्स सिस्टम कैसे बनाते हैं और मुश्किल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, ये अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। मेरे हिसाब से अगर हम ये समझ पाएँ कि हर कंपोनेंट कैसे काम करता है, हर हिस्से को खुद तय करने दें कि उसका सबसे अच्छा बिहेवियर क्या हो, मतलब डायनामिक तरीके से समय के साथ कैसे बदलता है,
तो ये झलक है कि कैसे रिसर्चर्स बायो कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं। मजे की बात यह है, इसमें शामिल होने पीएचडी या ग्रांट नहीं चाहिए। अगर फाइनल स्पार्क को आपका प्रोजेक्ट पसंद आया तो आप उनके साथ मुफ्त काम कर सकते हैं। वे अपने कुछ न्यूरॉन्स की 24/7 ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। तो हाँ, आप सचमुच एक पेट्री डिश देख सकते हैं, कुछ स्क्रीन सेवर्स से बेहतर। कुछ फ्लैशी चाहिए? फाइनल स्पार्क एक बटरफ्लाई भी देता है, एक 3D सिमुलेशन जो लगभग 10,000 न्यूरॉन्स को रियल टाइम में सेंसरी इनपुट पर रिएक्ट करते दिखाता है। मूल रूप से ये वर्चुअल RC कार कंट्रोल करने जैसा है, बस आपका रिमोट न्यूरॉन्स का गुच्छा है। और चिंता न करें, ये पूरा वर्चुअल है, सिर्फ विजुअल्स हैं। फाइनल स्पार्क के को फाउंडर फ्रेड जॉर्डन याद दिलाते हैं, ये टेक अभी शुरुआती दौर में है, ये जल्द आपके फोन या लैपटॉप की जगह नहीं लेगा, शायद कभी नहीं। जैसा जॉर्डन ने मजाक में कहा, ब्रेन ऑनर्गेनॉइड पर विंडोज चलाना अवास्तविक होगा। हालांकि डूम चला सकता है या नहीं खबर नहीं, फिर भी जॉर्डन की बात याद रखें, सेमीकंडक्टर बनाने वालों को नहीं पता था दुनिया इस पर क्या बनाएगी। यही तो डरावना है ना, सारे क्या होगा अगर। मुझे लगता है आपको मेरे हाइपोथेटिकल की जरूरत नहीं, आपने शायद खुद भी सोचा होगा। मेरे लिए सबसे बड़ा, हमें कैसे पता चलेगा ब्रेन ऑर्गेनॉइड ने चेतना पाली, और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या? वेल, मेरे पास अच्छी और बुरी खबर है। बुरी खबर, हमें कोई अंदाजा नहीं हम क्या कर रहे हैं। अच्छी खबर, हमें कोई अंदाजा नहीं हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास इंसानी चेतना की ठोस परिभाषा भी नहीं। कॉर्टिकल लैब्स असल में इसी समस्या से निपटने के लिए एक पब्लिक सर्वे कर रहा है। एक कॉमन भाषा के बिना बायोटेक रिसर्च को ठीक से डिस्क्राइब करना भी मुश्किल है, खासकर जब सेंटियंस, कॉन्शियसनेस और थिंकिंग जैसे शब्द इमोशनल रिएक्शंस पैदा करते हैं। कौन तय करेगा कि थिंकिंग किसे माना जाएगा, सेंटियंस का थ्रेशोल्ड क्या है, ये आपकी राय देने का मौका है। इतना कहने के बाद, और मैं इस पर जितना जोर दूं कम है, हम इमरजेंसी शटडाउन बटन की जरूरत के पास भी नहीं हैं। ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स आज बेस्ट पर भी बहुत छोटे हैं असली दिमागों से, उनके नेटवर्क्स पक्षी, चूहे, सांप या कीड़े के लेवल पर भी नहीं है। बेचारी फ्रूट फ्लाई का अनादर नहीं, जैसा डॉ स्केपर ने कहा।
हमने समझने में प्रगति की है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, तो फिलहाल ये ऐसी चीज नहीं जिसे हम उनसे कुछ भी ऐसा करा सकें जो साबुत दिमाग या दिमाग के स्लाइस कर सकते हैं, क्योंकि वे ट्रेंड और अकोमोडेटिंग रहे हैं।
तो नासा के टेक्नोलॉजी रेडीनेस स्केल पर बायो कंप्यूटिंग कहाँ आता है? वेल, छोटा जवाब, एन अभी भी काफी हद तक लैब में ही है। CL1 और फाइनल स्पार्क के न्यूरल प्लेटफॉर्म जैसे बायो कंप्यूटर्स एक्टिव डेवलपमेंट में हैं। इन्हें यूज करने वाले रिसर्चर्स बीटा टेस्टर्स हैं, फीडबैक दे रहे हैं, सुधार बता रहे हैं, डेवलपर्स को रियल टाइम में बनाने में मदद कर रहे हैं। ये साइंटिस्ट्स और स्टार्टअप्स का सच्चा कोलैबोरेशन है। और जूम आउट करें तो बायो कंप्यूटिंग कुल मिलाकर अभी बस सतह खरोंच रहा है। ये उभरता विज्ञान है कुछ कुछ क्वांटम कंप्यूटिंग या एनालॉग कंप्यूटिंग की वापसी जैसा। अभी हम घाटी के टॉप पर खड़े नजारा देख रहे हैं, पर नीचे क्या इंतजार है अभी कोई नहीं जानता, और उम्मीद है कुछ ऐसा ना हो जिसके बहुत मुंह हो जो चीख न सकें। बायो कंप्यूटिंग और बायोटेक व्यापक रूप से एक बार में कवर करने के लिए बहुत बड़ा है। अगर इस वीडियो ने आपके न्यूरॉन्स फायर किए तो मैं कुछ और इंटरव्यूज स्टिल टू बी डिटरमिंड पर डालूंगा, जो मेरा फॉलो अप पॉडकास्ट है। हम ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स की ताकतों, चुनौतियों, वाइल्ड संभावनाओं में गहराई से जा सकते हैं। सच कहूं तो अभी भी एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है। पर आप क्या सोचते हैं, क्या SBI कॉन्सेप्ट उम्मीद देता है, या ऑर्गेनॉइड्स फ्लॉप होने से पहले सिलिकॉन पर रहें? कमेंट्स में बताएं, और मेरा फॉलो अप पॉडकास्ट स्टिल टू बी डिटरमिंड जरूर सुने, जहां हम ये बातचीत जारी रखेंगे। हमेशा की तरह मेरे पेट्रंस को उनके सपोर्ट और चैनल चलाने में मदद के लिए धन्यवाद। दिमाग खुला रखें, जिज्ञासु रहें, और अगले वीडियो में मिलूंगा।